ईंट थी वो फेंक दी। दूसरी स्त्री ने कहा, देखा संन्यास तो ले लिया पर अकड़ नहीं। संन्यासी उठकर बैठ गया। तीसरी स्त्री ने कहा, स्त्रियां आएगी और जाएगी, तुम क्यों अपने विचारों और कर्म को बदलते। और एक चौथी स्त्री थी, उसने कहा, हम पनिहारी तो पानी भरने के लिए आएगी और जाएगी, हम कुछ न कुछ तो कहेंगे, तुम तो केवल हरि के गुण गाते रहो और हरि की याद में मगन रहो, तुम क्यों प्रभावित होते। दुनिया चाहे जो कहे कहने दो, दुनिया को जो कहना है करना है करने दो, तुम क्यों प्रभावित होते। हम चाहे कुछ भी करें, क्या ऐसा हो सकता है कि संसार कुछ भी ना कहे, हो सकता है। भक्ति मार्ग में कहानी दिखाते हैं शंकर और पार्वती को, जा रहे हैं अपनी नंदी बैल को लेकर, तो लोग कहते हैं कैसे मूर्ख दाम्पत्य, बैल होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। उनको लगता बात तो सही है और दोनों बैल पर बैठ जाते हैं और जाने लगते हैं। कई थोड़ा दूर जाने के बाद लोग कहते हैं, देखा कैसे निर्दयी लोग हैं, बेचारा जानवर कुछ बोलता नहीं, इसके लिए दोनों उस पर बैठ गए। उनको लगता है ये तो बड़ी बुरी बात है। शंकर जी उतर जाते, पार्वती बैठी रहती, आगे बढ़ते। लोग कहते हैं कैसा कलयुग आ गया, पति परमेश्वर, पति पैदल चल रहा है और खुद स्त्री बैठ गई। पार्वती को लगता है बात तो सही है, वो उतर जाती है, शंकर जी बैठ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं ऐसा निर्दय पति, पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, अर्धांगिनी है, खुद बैठा है आराम से और पत्नी को पैदल लेके जाना। वो सोचते अब क्या करें, तो शंकर जी उस बैल के दो पैर पकड़ लेते और पार्वती दो पैर पकड़ लेती और सिर पे उठा के बैल को ले जाते हैं। तो लोग कहते हैं देखा कैसे मूर्ख लोग हैं संसार में, बैल पर सवारी करनी चाहिए क्योंकि बैल को उठा के ले जा रहे हैं। चाहे कुछ भी करे, दुनिया वाले कुछ ना कुछ तो करेंगे कहेंगे। दूसरे के मुंह को हम बंद कर सकते हैं, ज्ञान में आ जाओ तो भी कहेंगे, ज्ञान अगर छोड़ दो तो भी क्या बिना कहे रहेंगे, जो हमारे ही पीछे पड़े थे। ज्ञानियों की तो छोड़ो, ज्ञानियों की भी बात, एक माता थी जो ज्ञान में चलती थी, उसका एक बेटा था जिसको उसने उसके मां ने ही ज्ञान में लाया, परंतु मां की बड़ी इच्छा थी कि एक बहू हो, परंतु बेटा भी जिद करके बैठा कि मैं तो कुमारी रहूंगा क्योंकि मां ने ही ज्ञान में लाया, परंतु मां ने नहीं माना, बहू तो चाहिए। और ब्रह्मा कुमारी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, बीके कुमारी, बीके डॉटरी का। उसने बहुत मना किया परंतु मां नहीं मानी और शादी करा, और बहू जो आई वो एकदम खतरनाक। तो कभी सोचा नहीं था किसने, हर दिन झगड़ा, तेज तर्रार, हर दिन झगड़े, बात बात में झगड़ा। तो बेटे ने मां से कहा, देखा तुमने ही तो कहा था ना शादी करो। तो मां ने कहा, कहा तो मैंने था पर की तो तुमने ना। संसार को जो कहना है कहना, हम जिस मार्ग पर निकल पड़े उससे पीछे नहीं, और इस मार्ग में बहुत सारे नियम है और बहुत सारे मर्यादा है, इसकी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से नियम है और वो कौन कौन से मर्यादा है, ईश्वरीय जीवन में सबसे पहला नियम अमृत वेला। सबसे पहला नियम कौन सा है? अमृत वेला। पिछले एक मास में जिसने एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया वो हाथ उठा। पिछले एक मास में जिसने एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया, बस एक दो। पिछले 15 दिनों में जिसने एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया, इसमें बहुत है। पिछले एक हफ्ते में जिसने अमृत वेला मिस नहीं किया वो इसमें और ज्यादा। आज सुबह जिसने अमृत वेला मिस कर दिया आज ताजा ताजा सुबह मिस कर दिया, मतलब नहीं किया, मतलब देर से उठे, वो कौन कौन? कोई भी नहीं। ईश्वरीय जीवन का पहला नियम है अमृत वेला। यदि अमृत वेला ठीक है तो सारी दिनचर्या ठीक है, यदि अमृत वेला ही गड़बड़ है, अमृत वेला ही उठी 4 बजे रहे हैं या 4:15 बजे या 4:30 बजे या 4:45 बजे तो कहां से शक्ति देती है? मुरली कितनी भी सुन लो, क्लासेस कितनी भी सुन लो, भट्टिया कितनी भी कर लो, मेगा प्रोग्राम कर लो, कितनी भी सेवा करो, कितनी भी भाग दौड़ करो, कितना भी यहां से वहां जाओ, दिन रात लगा दो, परंतु अमृत वेला ही नहीं। टकराव होगा, संघर्ष होगा, झगड़ा, डिस्टर्बेंस, साथियों के साथ संघर्ष, सेवाओं सेवाएं करने के बाद भी संतुष्टता नहीं होगी। बाबा ने कहा है अमृत वेला जैसे कि तुम अपनी गाड़ी को पटरी पर डाल देते हो, फिर सारे दिन भर तुमको ये नहीं सोचना पड़ता है कहां क्या करना है, स्वतः ही होगा। और वही यदि मिस हो रहा है, वही यदि उस समय हम नहीं उठ पा रहे हैं और उस समय हम उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो सारे दिन भर देह खींचेंगे, सारे दिन भर देह का आकर्षण होगा, क्योंकि ये देह है, इसमें आत्मा बंद है और उस आत्मा ने अपने होने का अनुभव नहीं किया स्व का, तो वो देहभान की अवस्था है और उस देहभान की अवस्था में देह की तरफ आकर्षण होगा। वैभव की तरफ आकर्षण होगा, भोगों की तरफ आकर्षण होगा, संसार की जो अल्पकालीन दैहिक और सांसारिक सुख है वो खींचेंगे, क्योंकि आत्मा की सबसे अधिक गहरी प्यास है सुख की। यदि उसे अतीन्द्रिय सुख नहीं दिया गया तो वो दैहिक और सांसारिक सुख चाहेगी, क्योंकि उसे सुख चाहिए, चाहे अतीन्द्रिय दो या इंद्रिय, वो नहीं मिला तो उसके पीछे जाएगी। और जब उन सुखों के पीछे जाओगे, परिणाम दुख है। गीता में एक जगह लिखा है, वो सारे सुख जो स्पर्श जन्य टच से उत्पन्न होते हैं, अंतिम में दुख में परिणित होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं दुख में। प्रातः स्मरामि, सुबह सुबह उठना और प्रभु की याद में बैठना। बाबा ने कहा है, अमृत वेला स्वयं को ईश्वरीय प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्त्री का, किसी भी पुरुष का प्रेम तुम्हें अपनी ओर आकर्षित ना करे। क्या ऐसा हमने अपने आप को भरा है? और केवल उठ के बैठना, अमृत वेला वो नियमित हो और वो शक्तिशाली हो, और उसमें नींद का प्रभाव ना हो, और वो साधारण ना हो, और उसमें व्यर्थ ना हो, और उसमें एकाग्रता हो, और उसमें ईश्वरीय प्रेम हृदय में भर जाए, ऐसा अनुभव हो। करने के बाद ऐसा लगे कि आत्मा में अनंत शक्तियां भर गई हैं। इसलिए उठने का लक्ष्य 4 बजे नहीं, लक्ष्य रखना है 3:30। स्टूडेंट यदि ये सोचता है कि 50% पासिंग मार्क है तो मैं 50% ले लूंगा, इतना लक्ष्य लेगा तो फेल ही हो जाएगा। नॉट फेलियर बट लो एम इज प्राइम, अंग्रेजी में कहावत है, असफलता नहीं परंतु छोटा लक्ष्य रखना, छोटा ध्येय रखना अपराध है। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखा जाता है। उठने का लक्ष्य रखो 3:30 और फिर धीरे धीरे पीछे हटो और पीछे और पीछे और पीछे, 5-5 मिनट के लिए पीछे जाने के लिए कड़ी तपस्या की आवश्यकता। अगर कोई रोज 3:30 बजे उठता है और उसे कहो कि तुम 3:25 को उठो, इतना आसान नहीं, उसमें तपस्या और उसमें नियमितता, कंसिस्टेंसी। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, फिर फैशन नहीं है, फैड नहीं है कि 4 दिन कर लिया और फिर छोड़ दिया। समस्या जीवन में आई तो सुबह सुबह अमृत वेला उठे और भगवान को याद किया, समस्या दूर हुई, अमृत वेला बंद या साधारण या व्यर्थ हो उसमें, या तो नींद। प्रातः स्मरा हृदि संस्फुरदात्मक सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम। उपनिषद कहते हैं सुबह सुबह उठ जाओ, प्रातः स्मरा हृदि संस्फुरदात्मक, और वह जो आत्मा है, वह जो आत्म तत्व है उसको याद करो। सच्चित सुखम, उसमें सच्चा सुख है। परमहंस गतिम तुरियम, वो जो तुरिया अवस्था है, चेतना की 4थी अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों से पार जो द 4th है, सुपर कॉन्शियस, जिसका कोई नाम ही नहीं है, इसके लिए उसको 4था ही कहा है, तुरिया। सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरिया नचभाति भूत संगम। मैं ये भूत का संग नहीं, ये देह नहीं, ये जो हड्डी मांस का बना हुआ देह है वह मैं नहीं, मैं बहुत तद ब्रह्म निष्कलमहम नच भाति भूत संगम। मैं वह आत्मा, मैं वह आत्मा हूं, मैं वह शुद्ध पवित्र निर्मल प्रांजल सुपर काल का सुख मिलेगा। इसके लिए दृढ़ संकल्प और अमृत वेले की तैयारी रात से चालू होगी। अगर कोई सोचता है कि मैं रात में टीवी ही देखते बैठूं या इंटरनेट पर ही बैठा रहूं, तो 10 से कब 11 बज जाएंगे और 11 से कब 12। और कोई सोचे कि मैं किसी से बात करता रहूं, कोई व्यर्थ की चीजें करता रहूं, तो नहीं हो पाएगा। रात सुबह की तैयारी रात से चालू होगी। कुछ भी हो जाए 10 और 10:30 के अंदर सो जाना। जो कार्य करने हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अमृत वेला ही परम महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। यदि यही हम नहीं कर रहे तो अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा। और जिस जीवन में अतीन्द्रिय सुख है, दूसरा नियम जिसकी सुबह भी चर्चा की थी, अमृत वेले के बाद चिंतन, मनन, अध्ययन और ना कि नियम। तीसरा नियम मुरली। मुरली केवल आए, सेंटर पर गए और सुनी और लिखी और चले गए और हम संतुष्ट हो रहे कि हम ज्ञान में चलते हैं। ये भी आत्म प्रवंचना अर्थात खुद को धोखा देना, सेल्फ डिसेप्शन मात्र। यदि उस ज्ञान हम नहीं समझ पाए, यदि उस ज्ञान का गहराई से चिंतन और मनन हम नहीं कर रहे, तो केवल दिखावा और ढोंग और आडंबर मात्र, खुद को धोखा दे रहे। कितनी माताएं हैं जो रोज भूख लगाती हैं, एक दो तीन चार पांच माताएं, बस। और बाकी भगवान को बच्चा बनाए कि नहीं बनाए, बनाए घर का मालिक है तो मालिक को भूखा, गीता में लिखा है यदि तुम भोग लगाए बिना खाते हो तो तुम चोर हो। वो हमारा प्रेम है, 24 घंटे में एक बार भोग जरूर लगाना है। जो नहीं लगाते वो कल से लगाना चालू करें। उसके लिए जो जो चीजें चाहिए, थाली, छोटी थाली, छोटे बर्तन, कपड़ा, जो भी, ताकि जो भी बने सबसे पहले उसका भोग लगाया जाए, फिर उसको वापस डाल दो बड़े बर्तन में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रेष्यति। भगवान के वचन है गीता में, हे अर्जुन, अगर कोई मुझे अत्यंत प्रेम से पत्र, पुष्प और फल देता है तो भी मैं उसे स्वीकार करता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पत्र, पुष्प और फल भी देते हैं, क्योंकि भगवान भावना का भूखा है, तुम्हारे 56 भोग का नहीं। भावना जिसकी कैसी है, भाइयों में से भोग कौन लगाता है? बहुत अच्छा। वो कौन है जो खुद अपना भोजन बनाते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। बाबा के पास 4 थाली आई भोग की। पहली थाली आई मधुबन से, जिसमें पैसे कमाने वाला कोई और, भोजन की सामग्री लाने वाला कोई और, भोजन बनाने वाला कोई और, भोजन भोग लगाने वाला कोई और, परोसने वाला बाद में कोई और, खाने वाला कोई और, पहली थाली। दूसरी थाली बाबा के पास आई सेंटर से, भोजन बनाने वाला, भोजन के लिए पैसा देने वाला कोई और, भोजन लाने वाला कोई और, भोजन बनाने वाला कोई और भोग लगाने वाला कोई और, या शायद वही जिसने भोजन बनाया, दूसरी थाली। तीसरी थाली एक गृहस्थ परिवार से आई जो ज्ञान में चलता है, भोजन कमाने वाला, पैसे कमाने वाला कोई और, सामान लाने वाला वही या कोई और, भोजन बनाने वाला कोई और, भोजन भोग लगाने वाला या परोसने वाला कोई और या वही स्त्री। यह तीसरी थाली बाबा के पास आई। और एक चौथी थाली बाबा के पास आई एक कुमार की, जो खुद भोजन बनाता है, जो खुद कमाता है, जो खुद लाता है सामान, और जो खुद भोजन बनाता है और खुद भोग लगाता है। तो भगवान सबसे पहले किस थाली पर उसकी नजर पड़ेगी? स्वयं कमाता है, स्वयं लाता है, स्वयं भोजन बनाता है, स्वयं भोग लगाता है, और स्वयं भोग लगाकर, हम भोग की थाली की बात कर रहे हैं। चार थालियां बाबा के पास आई, एक पदवन से, एक सेंटर से, एक गृहस्थ से और एक कुमार से, अनन्य भाव से, जो मेरे अर्पण करता है ऐसा मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए और जो भोजन नहीं बनाते उन्हें भी भोग लगाना है। वो किसी भी चीज का हो सकता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी है उसको दृष्टि देकर ही स्वीकार करें, समर्पण भाव से, स्वमान के साथ, उसमें कंप्लेनिंग एटीट्यूड ना हो, उसमें ये ना हो, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है, प्रेम हो उसमें। झूठे फल शबरी के खाओ, दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग बिदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सखाई। दुर्योधन ने बुलाया कृष्ण को, मेरे यहां चलो, शांति दूत कृष्ण बनकर गया है। कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, मैं तो विदुर के घर जाऊंगा, क्योंकि वहां पर प्रेम है। और वो विदुरानी क्या खिला रही है भगवान को? केला खुद खा रही है और छिलके खिला रही है, ऐसी प्रेम मगन अवस्था है उसकी। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाए। प्रेम प्रेम उसे स्वीकार। पांचवा नियम कर्मयोग, कर्म करते समय बीच बीच में उसको याद करना, उसको धन्यवाद देना, उसका शुक्रिया करना। कर्म करते समय ऐसा ना हो जाए कि सेंटर गए, घर गए, नाश्ता बनाया और उसको भूल गए, और सीधा शाम को ही उसकी याद। बीच में संघर्ष, बीच में बहुत सारी चीजें हो गई और उसने तो भूल ही गया कि वो भी है, पता ही नहीं। इतनी बातें हो गई सुबह से लेकर शाम तक, 10-15-20 बातें हो गई, नई नई समस्या खड़ी हो गई, किसी ने कुछ कर दिया, कह दिया, अकस्मात कुछ हो गया, किसी की मृत्यु और किसी की बीमारी, बीच बीच में कर्म करते हुए भी उसको याद करते रहे। उसका भी आधार अमृत वेला ही है। अगर अमृत वेला ही नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। अगला नियम ट्रैफिक कंट्रोल, किसी की दिनचर्या ऐसी है कि जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल के लिए शायद उस समय बिजी रहते हैं, अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद ही सेट करो। यदि उस समय हम बिजी रहते हैं 10:30, 12, 5:30 जो भी समय दिया हुआ है, मधुबन में हर एक घंटे घंटे में बचता है, शाम का योग 6:30 से 7:30 तक, या फिर जो ये नहीं कर सकते 7 से 7:30, चाहे सेंटर पर आए या फिर अपने ही घर में करें। यदि घर दूर है तो उस आधे घंटे को फिक्स कर देना है, क्योंकि दिन में इतना कुछ हुआ है, एटलीस्ट अगर योग ना भी लगे तो बाबा को सारा समाचार सुनाना, अपनी अवस्था का और सेवा का, क्या क्या हुआ सुबह से, कौन कौन मिला और क्या क्या हुआ, वो सुना दोगे तो हल्के हो जाओ। कहीं गलती तो नहीं कर दी, किसी से जोर से तो नहीं बोल दिया, किसी को डांट तो नहीं दिया, किसी ने थोड़ी सी गलती की थी और हमने इतना डांटा, आवेश पवित्रता का खंडन तो नहीं हुआ। नुमाशम का अगला नियम, रात्रि सोने से पहले ज्ञान का चिंतन या ज्ञान की चर्चा। अपने ही घर में एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं, अगर पूरा परिवार ज्ञान में है, दो लोग जिसमें हो, और वो रात को बैठकर ज्ञान की चर्चा करें कि आज सुबह की मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा। चर्चा, अगर कुमार है और उनका कोई संगठन है, दो या तीन लोग बैठकर चर्चा करें। या यदि कोई भी नहीं है तो किसी के साथ फोन पर भी चर्चा की जा सकती है। अगर वैसा भी संभव नहीं है तो अकेले में मुरली पढ़ना, चिंतन करना, योग में बैठना, कुछ तो नया पढ़ना अभ्यक्तवाणी से। ये एक नियम, और फिर सो जाए। सोते समय अपना जो कमरा है उसको भी वाइब्रेशन से, अपनी जो खटिया है उसको भी वाइब्रेशंस देना, ताकि कोई कुस्वप्न और विकारी स्वप्न और दुस्वप्न और स्वप्न दोष न हो जाए। सुबह से लेकर रात तक ये सारे नियम। अब हम थोड़ी मर्यादाओं की चर्चा करेंगे। इस ब्राह्मण जीवन सबसे पहली मर्यादा संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता, चाहे स्त्री या पुरुष, भाई बहन, विवाहित अविवाहित, सेंटर निवासी, गृहस्थी, सेवाधारी, समर्पित असमर्पित, मन से समर्पित, सबके लिए प्रमुख मर्यादा है संपूर्ण पवित्रता। या कुमारी या कोई कुमार, इस संसार की ऐसी कोई चीज हमने ना देखनी है, ना सुननी है, ना पढ़नी है, जो कि हमारे मन में विकार के संकल्प लाए, वासनाओं को जन्म दे। हमारी ये देह किसी दूसरे के भोग के लिए नहीं है और ना ही अपने स्वयं के भोग के लिए। किसी पुरुष का इस पर कोई अधिकार नहीं। जगदीश भाई एक बात सुनाया करते थे, एक कुएं के पास एक स्त्री खड़ी थी कन्या, और वहां से एक युवक आता है, कहता है मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, पानी दो। वो कन्या कहती है पानी मैं दूंगी, पर एक बात का ध्यान रखना, अंग से अंग न लगे तो ही मैं दूंगी। वो कहता है मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दो। और वो उसे अपने घाघर से पानी देती है और वो पानी पीता है। कुछ समय के बाद दोनों के माँ बाप दोनों की शादी तय कर देते हैं उनको बिना बताए, और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होती है और जैसे एक दूसरे के सम्मुख आते हैं, वो कन्या उससे कहती है अपना वादा याद रखना, अपना वादा याद रखना, अंग से अंग ना लगे, ऐसी अनटच्ड प्यूरिटी, इस देह को कोई हाथ ना लगा पाए। सभी कुमारी ऐसी संपूर्ण पवित्रता की धारणा, संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा, ब्रह्मचर्य में ही बहुत तेज है और ओझ है, विकारों में नहीं, क्षणिक सुख मात्र है, जो भी दुख बदल में बदल जाता है, ऐसा अखंडित अनब्रोकन सेलिबस है। केवल काम की ही बात नहीं, पवित्रता में तो बहुत सारी बातें आती हैं, परंतु ये मुख्य संकल्प की पवित्रता, बोल की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, संबंध संपर्क की पवित्रता दूसरी बात है। सबसे पहली मर्यादा है संपूर्ण पवित्रता, दूसरी मर्यादा है सेंटर से संबंधित, इस सेंटर पर यह समझना है ये क्या है। बाबा ने कहा योग आश्रम, बाबा ने कहा मिनी मधुबन है, बाबा ने कहा धर्मराज का दरबार है। यहां पर आकर यदि हमारी दृष्टि और वृत्ति खराब रहती है, या यहां पर आकर हम संसारी बातों की चर्चा करते हैं, यहां पर आकर बिजनेस और धंधा और पैसों की बातों की चर्चा करते हैं, वो मर्यादा नहीं। यहां आकर हम एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, या फिर यहां आकर बहनों की निंदा और ग्लानी करते हैं, या फिर यहां आकर अपना एक संगठन ग्रुप बनाते हैं। कई जगह होता है या फिर एक जगह से दूसरे सेंटर पर जाते हैं और इधर के बहन को पता भी नहीं, अपनी मनमत से सब कुछ कर लिया, अपना अपना प्रोग्राम बनाना सेवाओं का, या फिर दबाव डालना बहनों पर, या फिर जबरदस्ती करना, मन मर्जी करना, मन अपने मन चाहे बात करना, दूसरों को डराना धमकाना, या फिर यहां पर ऐसे लोगों को ले आना जो विकारी है और जो हमको पता है विकारी है, फिर भी ले आना, Mesela bunları ya da kapırdı. Center se sambandhit maryada. Fir hai Madhuban se sambandhit maryada. Madhuban mein jana aur wahan par Madhuban niwasiyon ke avgun dekhna aur unki charcha karna aur choti baat ko bada kar phailana ya phir wahan jakar jhagda karna ya wahan jakar koi hangama karna ya wahan jakar kisi ko satana कुछ भी हो सकता है इसमें से जिद और सिद्ध करना वहां जाकर वो मर्यादा है वहां किस लिए जा रहे हैं बाबा से मिलने जा रहे हैं जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वही कार्य करना है वहां जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए वहां योग और तपस्या और ज्ञान में समय लगाना है ना कि व्यर्थ भटकने में घूमने में और शॉपिंग करने में बहुत समय पहले एक माताओं का ग्रुप आया था मधुबन दादी प्रकाश मणि ने शायद उनसे कहा था जो भी यज्ञ के लिए दे सकती है दे सकते हैं माताओं ने कहा था नहीं दादी हम बहुत गरीब हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है हम कहां से दें दूसरे दिन वही सारी माताएं मार्केट से अपनी बहुओं के लिए ड्रेसेस और अपने परिवार के लिए सामान खरीद खरीद के ला रही साइट सीन के लिए जा रहे हैं मधुबन वहां जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वही कार्य करना है या वहां की समस्याओं को ठीक करने जा रहे अपनी तो समस्या ठीक करो पहले तुम्हें कहीं पर भी इन्वॉल्व हस्तक्षेप नहीं करो जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य करो और आ जाओ बस तपस्या के लिए जा रहे हो केवल तपस्या करो वो सब छोड़ के अगर किसी ऐसे ग्रुप में चले जाते हो जहां पर भोजन और भोजन और भोजन की बातें चलती है केवल वो भी व्यर्थ है वो सब छोड़कर तपस्या छोड़कर यदि वहां पर जो विस्तार है डिजिटल वर्ल्ड का आईटी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं या बातों में मोबाइल और कार और एडमिनिस्ट्रेशन ये सब मर्यादाएं नहीं जिस कार्य के लिए जा रहे हो वही करो वहां लोग जाते हैं और सब व्यर्थ की बातें करते हैं और फिर सेंटर पर यहां सल्ली पर बैठकर अनुभव सुनाते हैं कि वाह 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 हमने बाबा से ऐसा मिलन बनाया ना तो अनुभव हुआ ना कोई मिलन बना और बड़ी बड़ी बातें खाली करते हैं हमने ये किया यूं किया और क्यों किया मधुबन से संबंधित मर्यादा है अगली ड्रेस बैच आर्मी और आर्मी को हमेशा अपने ड्रेस में रहना चाहिए और अपने बैच में वो दूसरी बात है कि बाबा ने कहा है तुम तो कोई भी ड्रेस पहन सकते हो पर उसी भगवान ने ये भी कहा है कि तुम आर्मी हो और तुम्हारी ड्रेस बाबा ने दे दी है केवल ये ड्रेस अगर पहनी रहे और बैच लगा रहा तो स्वतः ही सेवा होगी हमने कुछ कहा नहीं किसी को हम खाली खड़े हैं और सेवा होती रहेगी पर यदि हमें डर है सन्यासी कैसे होते हैं उनको शर्म लगती है क्या वो सरदार जी देखें शर्म लगती है पगड़ी बांधने लोग क्या कहेंगे कहने तो लोगों को जो करना है कहना है वो अपनी पगड़ी छोड़ते हैं तो क्यों हम इस ड्रेस को छोड़ें वो अपना बैच आर्मी वाले अपना बैच लगाने से डरते हैं पर हम डरते हैं छोटा सा बैच यहां पर जो दिखाई भी नहीं देता ताकि दोनों काम हो जाए लगा भी रहे और लोगों को पता भी ना चले ऐसा लगाते हैं छोटा सा ये सेवा होगी और इससे दिखाई देगा कि तुम कितने पक्के हो अपने नियमों पर और अपने मर्यादाओं पर। वो रंगीन और कलर की दुनिया छोड़ दी है और तो हम जो भी करें, जैसे कहानी में बताया, दुनिया वाले तो कुछ ना कुछ कहेंगे। उस दुनिया को छोड़ दिया है, वापस उतर नहीं जाना, चाहे कोई भी। सेवा अर्थ है ना, तो अलग पर एटलीस्ट जब सेवा केंद्र पर आ रहे हैं तब, और वो ऐसे रंग ना हो जिससे संसारिकता लौकिकता झलकती है, उसमें रूहानियत। अगर कलर हो भी तो लाइट पेंट, ड्रेस के नियम और पैच के नियम, हिम्मत चाहिए। एक भाई है बहुत सीनियर डॉक्टर, वो कहते थे ज्ञान में आने के बाद कितने सालों तक हिम्मत ही नहीं हुई पैच लगाने, पर अब सोचता हूं कि लगाया होता तो कितनी सेवा हो गई होती। लोग पूछेंगे क्या है, क्या तुम्हारी धारणा है, ड्रेस और पैच की मर्यादा अगली पहुंचे। अगर कोई कहे सहयोगी आत्मा, हम आपके पास आते हैं, हम आपके सेंटर पे आते हो, आप भी हमारे घर पर आओ, हम उसको निमंत्रण देते हैं, वो आते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, परंतु ज्ञान में नहीं चलते, और फिर हमको बुलाते हैं और कहते हैं थोड़ा तो खाओ, तो क्या करेंगे, खा लेंगे, क्या करेंगे। वो बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे, बहुत सहयोगी है, बहुत प्रेम से हर प्रोग्राम में आते हैं, हम जब भी बुलाते हैं आते हैं, मधुबन भी हम उनको लेके गए, परंतु ज्ञान में नहीं चलते। मुरली रेगुलर नहीं आते, धारणाएं रेगुलर नहीं है, नॉनवेज छोड़ा या ना छोड़ा जो भी, कोई ना कोई व्यसन अब भी है, पर है बहुत अच्छे लोग, तो क्या करेंगे, बोलेंगे हम तो तुम्हारे यहां आते हैं थोड़ा तो खाओ, हमने अपने हाथ से बनाया है, बाहर का नहीं है। आप कहोगे हम बाहर का नहीं खाते, वो कहेंगे बाहर का है ही नहीं, ये तो हमने अपने हाथ से बनाया है, तो क्या कहोगे, तुम शूद्र हो आ? वो कहेगा हमने सब कुछ किया है, एकदम नहाकर सब कुछ बनाया है आपके लिए खास, और इतना सारा बनाया है, वेस्ट हो जाएगा सब, एकदम पवित्रता से बनाया है। आप बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे, धर्म संकट तो क्या करना है, खाना है नहीं खाना है, वो पूछ रहे हो क्यों, अरे हमने अपने हाथ से बनाया है, सारी पवित्रता के साथ बनाया है, स्नान करके बनाया है, और आपकी याद में बनाया है, खास आपको याद करते हुए, और खास आपके लिए ही बनाया, हमको पता है आपको ये जिलेबी पसंद है, इसके लिए खास आपके लिए जिलेबी बनाई है। और बाबा को तो याद तो हमारी निरंतर है ही है, अब बोलो, बाबा तो हमारे है ही है, अरे पर वो सहयोगी है, अत्यंत स्नेहपूर्ण उनका व्यवहार है, प्रेमी है, सेंटर पर आते हैं, हर प्रोग्राम में सहयोग देते हैं, सेंटर में प्रोग्राम होते हैं तो हॉल देते हैं तुमको, तो क्या कहेंगे, तुम भिखारी हो, अरे अरे, अरे। क्या करेंगे, वो आप मुरली नहीं करते हो, दादा नहीं करते युक्ति से चलना, उनको अपने नियम और मर्यादाओं के बारे में पहले ही जानकारी देनी, चाहे कितना भी उनको कठोर या बुरा लगे, पर उनको बुरा नहीं लगेगा, अगर वो सच्चे सहयोगी है तो स्वीकार करेंगे तुम्हारी और रिस्पेक्ट करेंगे तुम्हारी धारणाओं के प्रति, उनके मन में रिस्पेक्ट आएगा। चक्रधारी बहन ने एक बार मुरली में बात सुनाई थी, ऐसे ही एक सहयोगी उन्होंने घर बुलाया, बहुत आग्रह किया, बहुत आग्रह किया, इतने प्रेम से, इतने स्नेही, तो हम क्या करें अब। और ये भी कहा, तुम 40 साल के योगी हो, क्या इतनों से हमारा खाने से पतित बन जाओगे। सोचते हैं कि ये हमारे जीवन में नहीं, उसको धारण करें।